हमारी राह से पत्थर उठाकर फेंक मत देना, हमारी राह से पत्थर उठाकर फेंक मत देना, लगी है ठोकरें तब जाके चलना सीख पाए हैं। अपने दराज कद पे बहुत नाज था जिन्हें, अपने दराज कद पे बहुत नाज था जिन्हें, वो पेड़ आंधियों में जमी से उखड़ गए। माँ ने एक रोज किसी बात पे पीटा था मुझे, माँ ने एक रोज किसी बात पे पीटा था मुझे, फिर कलेजे से लगाकर मुझे रोई भी बहुत। मैं जमी पर एक जर्रे के सिवा कुछ भी न था, मैं जमी पर एक जर्रे के सिवा कुछ भी न था, माँ के कदमों में झुका तो आसमां होता गया। दोस्तों, हमारे जज्बात, हमारे विचार किसी भाषा किसी धर्म के मोहताज नहीं होते, इन्हें तो एक सच्चा हृदय चाहिए होता है, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है वही दिल तक जाती है। इसीलिए वही रचनाकार सही मायनों में सफल कहा जा सकता है जो दिल तक उतर जाता है, और ये तभी होता है जब उसकी बात दिल से ही निकली हो। अभी मैंने ऊपर जिन चंद शेरों को पढ़ा, उन्हें सुनकर आप में से बहुत से मेरे श्रोताओं को आभास हो ही गया होगा कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, आज शायर नफस अंबालवी जी हमारे साथ होंगे। उनकी शायरी की यही विशेषता है कि उसे सुनते ही सुनने वाले को यही लगता है कि अरे, मैं भी तो यही सोच रहा था। आज उनकी गजलों और नज्मों को तो हम उनसे सुनेंगे ही, साथ ही उनके आरंभिक जीवन और अदबी सफर के बारे में भी उनसे ही जानेंगे।
नमस्ते सर, चुभन के पटल पर तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ।
बहुत बहुत नमस्कार, कैसी हैं आप?
बस अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं?
मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपका इंतजार कर रहा था मैं
जी सर,
और आपके तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद।
जी सर, आपको भी। और सर, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी, हरियाणा साहित्य अकेडमी की तरफ से आपको सर्वश्रेष्ठ उर्दू शायर का सम्मान मिल रहा है इस साल, हम सबको बहुत खुशी है सर इस बात की।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका
जी सर,
ये सब आप जैसे लोगों की मोहब्बतों का सब परिणाम है कि मुझे इस अवार्ड के लिए नवाजा गया, हालांकि मैं पहले भी एक बार मुझे ये अवार्ड मिल चुका है। मेरी किताब के सराबों का सफर है
जी जी।
उसे भी ये एकेडमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है, तो ये एक तरह से दूसरा एकेडमी अवार्ड है मेरा
जी।
तो मैं तमाम अपने चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ
जी सर, बिल्कुल। तो सर, हम लोग अपनी बातचीत शुरू करें, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे हम भी, हमारे श्रोता भी, अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप अपने बचपन के बारे में?
हाँ जरूर जरूर, मैं आज इस तरह का इंटरव्यू आमतौर पर हम लोग जो इंटरव्यूज देते हैं उसमें ज्यादा हम अदबी बातें करते हैं, तमाम उर्दू की बात होती है, शायरी की बात होती है
जी सर। आपके अदबी सफर के बारे में भी जानना चाहूंगी सर, लेकिन थोड़ा सा मैं ये इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ ये बात आपसे, क्योंकि आप पेशे से चिकित्सक हैं, तो कैसे इस क्षेत्र में आप आ गए ये जानने की जिज्ञासा थी मेरे मन में, इसलिए मैंने पूछा।
जी जी जी, मैं आपके तमाम सुनने वालों को मैं पहले ये बता दूं कि मैं अंबाला से एक छोटा सा शायर हूँ, डॉक्टर नफस अंबालवी के नाम से जाना जाता हूँ। नाम मेरा कमलेश कौशिक है, नफस अंबालवी मेरा तखल्लुस है, और मैं उर्दू का शायर हूँ। और आपने अगर बहुत से लोग जो शायरी में थोड़ा ज्यादा अपना शौक रखते हैं उन्हें तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में मालूम होगा,
जी
लेकिन
सर
दूसरे लोगों को ज्यादा नहीं भी मालूम होता।
मैं सर बताना चाहूंगी आपको कि जैसे पता चला तो मेरे कुछ सुनने वालों को जब ये पता चला कि आप आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने मेरे से बहुत सारे प्रश्न कहे कि नफा संभालवी जी आएंगे तो उनसे ये पूछना वो। कुछ लोगों ने कहा कि कमलेश कौशिक जी से वो नफा संभालवी कैसे बने ये जरूर पूछना। मैंने कहा ठीक है ये मैं जरूर पूछूंगी सर से।
हाँ ये तो खैर मुझे भी ये जानना है कि मैं नफा संभालवी कब और कैसे बन गया।
जी सर
मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं कब कमलेश कौशिक से नफा संभालवी हो गया। देखिए भावना जी इसमें ना हम लोग कई बार जो हमें उर्दू के लोगों में ये दिक्कत नहीं होती कि वो लोग ये जानते हैं कि नाम और तखल्लुस आपका अलग अलग होता है। जैसे साहर लुधियानवी थे, साहिर का मतलब होता है जादूगर।
अच्छा।
और लुधियाना के वो थे इसलिए वो लुधियानवी हुए।
जी
ये एक रवायत है उर्दू में कि जब शायर कोई लिखते हैं तो वो तखल्लुस के साथ लिखते हैं, अपने नाम के साथ नहीं लिखते हैं।
जी
जैसे गालिब, साहिर लुधियानवी का जो नाम था वो जनाब अब्दुल हई साहब था।
जी
अब्दुल हई, तो अब्दुल हई अगर मैं कहूं कि आपने अब्दुल हई की फला नज्म पढ़ी है परछाइयां, तो भावना जी देखेंगे कि ओहो। नहीं भावना जी को तो हो सकता है मालूम हो।
नहीं सर नहीं मालूम।
लेकिन आमतौर पर जो है वो लोगों को नाम नहीं मालूम होते, फिर चाहे हम फिराक गोरखपुरी की बात करें, फिर चाहे हम नूर साहब की बात करें, जितने भी तमाम लोग हैं शायर हैं, जिगर मुरादाबादी है, दाग दिल भी हैं या गालिब हैं, ये सिर्फ तखल्लुस से नाम उनका कुछ और होता है। ऐसे ही मेरा नाम जो है, मैं ब्राह्मण हूँ और कमलेश कौशिक मेरा नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ एक अपना दवाखाना चलाता हूँ, मेरा एक हॉस्पिटल है छोटा सा। और शायरी का शौक मुझे बहुत पहले से था, शायद मुझे याद भी नहीं है कब से है। मैंने तो जब से मुझे लगता है कि मैं मुझे थोड़ा बहुत होश आया है, मैं तब से मुझे लगता है कि मैं शायरी के बारे में काफी सोचता था और मुझे गाने का शौक था। मैं गजलें गाता था बचपन में। मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जो बड़ी एक तरह से फिलॉसफीज हैं
जी जी,
मैं उन्हें गाता था। हालांकि शायद मुझे लगता है बचपन में किसी भी बच्चे को उनकी समझ नहीं होती
जी,
मगर मुझे वही शौक था
जी।
लोग हैरान भी होते थे कि ये कैसे गाता है इतना छोटा सा बच्चा और बहादुर शाह जफर की गजल गा रहा है, तो लोग बड़े हैरान होते थे
जी।
फिर मैं महफिलों में जाता रहता था, मैं जहाँ पार्टीज में कहीं जाना, मैं आपको बता दूं कि मेरे वालिद जो थे वो आर्मी में ऑफिसर थे, मेजर थे
जी जी।
मेरा पूरा बचपन जो है वो आर्मी के माहौल में ही गुजरा
जी,
और आर्मी के माहौल में वो चीजें बहुत कम होती हैं कि आपको बहुत इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है साहित्य का
जी।
तो ऐसे में ये भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि आपके अंदर का कहीं साहित्यकार जो है वो हड़ाई लेने की कोशिश करता है लेकिन उसे कहीं से पानी तो मिलता नहीं, तो उसे वक्त बड़ा लगता है
जी।
मैं ये करते करते कुछ थोड़ा बहुत लिखने लगा था जब मैं 10वीं क्लास में था, जहां तक मुझे लगता है मैं हिंदी में लिखा करता था
जी जी।
और बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैंने हिंदी में भी कविताएं लिखी हैं शुरू में, आजाद कविताएं, क्योंकि मुझे छंद बहर का मालूम नहीं था। एक वो हम गजल सुना करते थे, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, तुझे याद हो कि न याद हो
जी।
तो वहां से वो जो नफस है वो मेरे जहन में और भी बहुत से शेर थे या कहीं पर बात आती थी, वो नफस जो था ना, हम नफस वो फंस गया।
अच्छा। और नाम ही बन गया।
मुझे इस लफ्ज से बड़ा प्यार हो गया
जी।
और मुझे मतलब भी नहीं मालूम था कि नफस का मतलब क्या होता है, तो बाद में मैं थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझ आने लगी, तो मैंने नफस के नाम से लिखना शुरू कर दिया। और मुझे बाद में पता चला इसका मतलब होता है सांस।
सांस। अच्छा।
सांस जी। प्राण या लम्हा, कि इस नफस में आपसे बात कर रहा हूँ और इस नफस जो है वो आपके तमाम सुनने वाले जो है वो मुझे सुन रहे हैं, तो जिनका कि मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो ये नफस का मतलब होता है
जी।
मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलिए आगे चला जाए, ये तो हो गया तखल्लुस। अब शायरी वायरी की बात की जाए तो शायरी तो आती नहीं थी कोई खास। तो इस तरह से मैं नफस हुआ। फिर ये भी एक बात अजीब सी है, आपको शायद नहीं मैंने ये बताई कि मैंने 20 साल तक कुछ भी नहीं लिखा।
अच्छा।
यानी मैं डॉक्टर हो गया प्लस टू के बाद, और डॉक्टर होने के बाद अपना कारोबार शुरू किया, मैं हॉस्पिटल में रहा, जॉब की, उसके बाद अपना अस्पताल खोला और अपना अस्पताल चलाते रहे। तो एक ना वो माहौल बन जाता है
जी।
ये जो हम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये कई जगह बड़े ही अनपढ़ होते हैं
जी।
हमें पता ही नहीं होता कि दुनिया कहाँ है, बस मरीज और मैं और मेरा अस्पताल, बस कुछ नहीं मालूम दुनिया कहाँ है और कहाँ नहीं है। बहुत काम किया, बड़े लगन के साथ काम किया और मैं बड़ा एक कामयाब डॉक्टर कहलाया
जी सर।
100-150 मरीज रोज देखना तो नेचुरली, और सालों साल तक देखना, 20-20 साल तक।
आपको शायद राष्ट्रपति जी ने, ज्ञानी जैल सिंह जी ने सम्मान भी दिया था आपके चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए, है ना?
जी बिल्कुल बिल्कुल जी। वो मुझे 1992 में मुझे दिल्ली में दिया गया था
जी जी।
हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी।
जी सर।
वो मुझे तब वो इनाम दिया गया था। मैंने बहुत काम किया, मैं ऑल इंडिया लेवल पर अपनी एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था। मैंने काफी काम किया उस मुतालिक भी, अपने मेडिकल लाइन के लिए भी। तो वो एक बहुत बड़ा अवार्ड मुझे दिया गया, उससे नवाजा गया। तो ये कहानी है नफस अम्बालवी बनने की
जी सर। काफी अच्छा लगा सुनकर सर, नफस का मीनिंग तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा
जी।
तो सर मुझे पता चला सर एक बात और आपके बारे में, मुझे पता चली कि आप बांसुरी और माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं, शायद अभी भी बजाते हैं आप, उसके बारे में कुछ बताएं।
जी बेशक। मैं दरअसल, मैंने आपको जैसे बताया मैं तीसरी क्लास में था जब मैंने सबसे पहले गाना शुरू किया, फिल्मी गाने।
अच्छा।
मुझे गाने का शौक था
जी।
और गाने का भी ऐसा शौक था कि मैं क्या बताऊं आपको, कि मैं तो तबीयत से अंदर से एक गवैया ही था बस। और चाहे कहीं स्टेज पर गा रहा हूं या कहीं मान लीजिए मैं अकेला गा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अक्सर अपने मैं जोधपुर में हम लोग रहा करते थे, मैं कई जगह रहा हूं, कहीं सुनने वाले ये ना समझें कि मैं जोधपुर से हूँ, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग जगह जगह पोस्टिंग्स होती थी तो नेचुरली हमें वहाँ जाना होता था।
इस बात का भी तो प्रभाव पड़ता होगा सर आपके लेखन में, जो हर जगह जाके हर जगह की कला और संस्कृति को आप जानते थे, समेटते थे अपने अंदर, कुछ तो असर आता होगा सर इन बातों का, नहीं?
ये तो फर्क आ ही जाता है कि हम, क्योंकि अब मैं राजस्थान भी 4 साल रहा, वहाँ पढ़ा भी हूँ, तो मुझे सारा वहाँ का जो संस्कृति है और जो वहाँ की जबान है मारवाड़ी, वो भी मैं बहुत अच्छे से समझता भी हूँ और बोल भी लेता था, बहुत अच्छे से हम बोलते थे
जी।
फिर मैं इलाहाबाद रहा, तो इलाहाबाद भी रहकर हम बच्चे तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं ना जबान।
हमारे अवध, हमारे अवध की भी पहचान है सर, आप यहाँ का भी असर आपके सर।
हाँ तो हम लोग बोलते थे बिल्कुल और कोई बता ही नहीं सकता था कि हम हरियाणा के हैं। और मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे हमारा पंजाब बिल्कुल हमारे साथ लगता है।
बिल्कुल सर,
मैं तो खुद को काफी हद तक पंजाबी ही मानता हूँ। हरियाणा पंजाब अलग अलग, ये तो नाम अलग कर दिए हैं, वैसे तो एक ही है, ये कोई खास फर्क नहीं है इसमें। वो ये कि हम हरियाणा में, अम्बाला हरियाणा में आ गया, लेकिन हमसे 1 किलोमीटर दूर जो है वो पंजाब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पंजाबियत का भी बहुत ज्यादा असर है
जी।
लेकिन मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, मैं बोल लेता हूँ।
अच्छा।
लेकिन मैं पंजाबी पढ़ नहीं सकता, तो ये मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है इस बात पर। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है मुझे आगे।
ऐसा ना कहें सर, तब तो हमें तो बहुत शर्म से एकदम कहाँ हम जाएंगे, हम लोग को तो कोई भाषा नहीं लिखनी आती, और पंजाबी हम भी बोल लेते हैं लेकिन मुझे भी लिखनी नहीं आती पंजाबी इस तरह। तो
मुझे तो भावना जी हमेशा ऐसा लगता है
जी
कि हमें अगर मेरे बस में हो तो मैं हिंदुस्तान की सारी भाषाएं सीख लूं। मैं पंजाबी बोल सकता हूं, अंग्रेजी लिख पढ़ सकता हूं, उर्दू लिख पढ़ सकता हूं, हिंदी लिख पढ़ सकता हूं, संस्कृत बोल नहीं सकता, हाँ लिख सकता हूं, और संस्कृत की तमाम चीजें मैंने पढ़ी हैं तो मैं वो कर सकता हूं। हालांकि समझ सकता हूं मैं संस्कृत में, हमारे हम कई बार कुछ ऐसी गोष्ठियां में जाना होता है मेरा, जहाँ संस्कृत के बड़े विद्वान लोग आते हैं तो वो संस्कृत में बोलते हैं, पढ़ते हैं
जी जी।
तो मैं महसूस करता हूँ कि संस्कृत तो बहुत ही आसान जबान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता।
जी जी बिल्कुल सर।
हालांकि अब जरा चलन में नहीं है, ये कुछ खास ही लोगों तक महदूद रह गई, लेकिन हमारी जबानें जो हैं ये हमेशा बड़ी महान होती हैं।
जी जी,
मुझे यही बात समझ में आई है।
अब संस्कृत का भी काफी उत्थान हो रहा है सर, हमारे कार्यक्रम में ही चुभन में काफी विद्वान आए हैं संस्कृत के, और काफी कार्य हो रहा है और काफी फर्क भी आया इस समय।
हाँ, ये जो आपका कार्यक्रम है ना चुभन,
जी जी,
चुभन में खास तौर पर आपको मैंने अभी देखा कि आपके कार्यक्रम का नाम ही चुभन है।
जी सर,
तो ये बड़ा खूबसूरत नाम है, आज जिंदगी के इतने करीब की बात है। चुभन जो है हमारी जिंदगी में, मेरा एक शेर मुझे याद आता है,
सुनाए सर।
चारागर कहते हैं डॉक्टर को।
अच्छा,
तो आप शेर देखें कि चारागर जख्मों को मेरे हाजते मरहम नहीं, चारागर जख्मों को मेरे हाजते मरहम नहीं, जिंदगी जीने को थोड़ी सी खलिश भी चाहिए। खलिश जो है ये चुभन को कहते हैं।
अच्छा अच्छा,
हाँ, मेरे मरहम मत लगा मुझे, क्योंकि जिंदगी में थोड़ी सी चुभन जो है वो जिंदगी का रस पैदा करती है।
वाह, बहुत सुंदर सर।
हाँ जी, बहुत शुक्रिया
सर। कुछ सुनाएंगे नहीं तो मुझे तो अपने, मेरे श्रोता नाराज हो जाएंगे कि आपने कुछ सुनने ही नहीं दिया, नफस साहब आए और हम बात ही करते रह गए। कुछ सुनाए सर अपनी कोई गजल या जो भी आप चाहें शेर।
मैं जरूर सुनाऊंगा। देखिए, मैं आपको ना एक बात जरूर कहना चाहता हूँ।
जी सर।
मैं आपके तमाम सुनने वालों को ये बता दूँ, हम लोग तो शायर हैं, जितना आप कहेंगे मैं उतना सुना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं
सर। आप जितना सुनाएंगे हम सुन सकते हैं। आपको नहीं पता बहुत पसंद करते हैं लोग आपको।
लेकिन मैं जो शुरू करना चाहता हूँ, मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ कि मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। अम्बाला एक ऐसी सरजमीन है
जी जी,
जिसने बहुत बड़े बड़े अदीब पैदा किए, और उसमें हम नासिर काजमी साहब का नाम ले सकते हैं
जी।
नासिर काजमी साहब को कौन नहीं जानता, आपने इनकी गुलाम अली साहब की गाई हुई कई गजलें सुनी होगी, ये अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, दिल में एक लहर सी उठी है अभी कोई ताजा हवा चली है।
ये तो बहुत सुनी है सर, हमें पता नहीं था नासिर काजमी की, मतलब
काजमी साहब की है, और नासिर काजमी साहब जो थे वो अम्बाला के रहने वाले थे
जी जी।
ऐसे उनका शेर बड़े मकबूल हैं। मैं आपको दो एक शेर सुनाता हूँ, उनके आपको याद आएगा
जी।
कि कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चलें, कुछ यादगारे शहर सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याले यार की चादर ही ले चलें। और ये शेर देखें कि इस शहरे बेचराग में जाएगी तू कहाँ, इस शहरे बेचराग में जाएगी तू कहाँ, आए शबे फिराक तुझे घर ही ले चलें। ये नासिर काजमी साहब थे।
बहुत सुंदर।
एक तो बहुत बड़ा नाम हुआ है यहाँ, उनका नाम था सागर सिद्दीकी साहब।
जी जी,
सागर सिद्दीकी साहब बहुत बड़ी हस्ती थे। हम इन्हें अपने उसमें युग पुरुष और लेजेंड जो मानते हैं ना,
जी जी,
नासिर काजमी और सागर सिद्दीकी साहब, ये भी अम्बाला शहर के रहने वाले थे। बड़े गरीब से आदमी थे बेचारे, यहाँ लकड़ी की कंघियां बनाते थे।
जी।
फिर 47 में जो हादसात गुजरे हमारे मुल्क के साथ, तकसीम हुआ मुल्क,
जी,
तो वो लाहौर चले गए।
अच्छा।
और वहाँ कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हालांकि उन्होंने वहाँ कुछ रिसाले वगैरह शुरू भी किए, कुछ मैगजीन्स पे काम किया, कुछ नगमे लिखने शुरू किए, लेकिन वो बड़ी गरीबी में उनका गुजर हुआ और गरीबी में ही उनका इंतकाल हुआ। और किसी को मालूम भी नहीं था, बहुत ही गुर्बत यानी भिखारियों जैसी हालत थी उनकी। और वो ड्रग्स ड्रुग्स लेने लग गए और फिर वहाँ जो है उनसे लोग मुफ्त में ही नगमे वगैरह, फिल्म वाले नगमे लिखवा लेते थे, पैसे देते थे तो वो पूरे पैसे लेते भी नहीं थे, ऐसी हालत थी। एक बार बल्कि एक कोई जो वहाँ के गवर्नर थे अयूब खान साहब, उन्होंने उन्हें बुलाया कि भाई जाओ जरा देखो ये कौन शायर है, कौन है ये, और इसे लेकर आओ। तो किसी ने बताया तो उन तक ये बात पहुंची कि भाई बहुत बड़े शायर हैं और वो ऐसे हाल में हैं। तो उन्होंने जो लोग भेजे, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया सिद्दीकी साहब ने। और उनको जब उन्होंने जो कारिंदे थे सरकारी, उन्होंने जब देखा कि ये तो बहुत ही फटे हाल और गरीब सा आदमी है, ये क्या शायर होगा, उन्होंने एक सिगरेट की डब्बी उठाई और उस सिगरेट की डब्बी पे एक शेर लिखा था। वो शेर मुझे याद है कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के हाकिम से कोई भूल हुई है। और उन्होंने कहा कि ये जाकर अपने जनरल साहब को दे देना और कह देना कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया। और फिर वो एक दिन जो है यूं ही सड़क के ऊपर फुटपाथ पर ही उनका शरीर मिला पड़े हुए, और इस तरह से उनका कहानी खत्म हुई। लेकिन हम लोग जो हैं, मैं आपकी इस प्रोग्राम में भी ये बात जिक्र करना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि हम लोग जो हैं इन अदीबों का एहसान उतार नहीं सकते जिन्होंने हमारी सरजमीन को इतनी ऊंचाइयां बख्शी।
जी बिल्कुल, एक छोटी सी श्रद्धांजलि ही हमारी तरफ से हो सकती है उनको, बस और क्या मिली।
बेशक बेशक, क्यों नहीं, बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है कि चलिए मैं आपको कुछ
यहाँ पर जिक्र किया सर, आपने यहाँ पर जिक्र किया इन शायरों का, तो एक बात मेरे दिमाग में एकदम से आई है कि उस समय के शायरों में या कवियों में या कलाकारों में किसी भी क्षेत्र के हों और आज के में आप कुछ फर्क पाते हैं? जैसे आपने बताया कि उन्होंने जाने से ही इनकार कर दिया, कुछ लेने से इनकार कर दिया, और आज
हाँ।
जी
ये फर्क तो जमीन और आसमान का है, और मैं तो खुद इसी अहद का आदमी हूँ, तो मैं उस जमाने के लोगों के बारे में तो नहीं जानता ज्यादा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उस जमाने में, यानी अगर मैं अब से कुछ 40-50 साल पहले की बात करूं,
जी जी
बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, अभी थोड़े से पहले की, हमसे कुछ पहले की बात कर रहा हूं।
जी जी
तो यानी जब ये लोग थे, हयात में थे और इन लोगों ने बहुत काम किया, साहिर लुधियानवी जैसे लोग थे जिनका कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ।
जी बिल्कुल,
साहिर लुधियानवी साहब की मैं तमाम वो पढ़ता रहता हूँ और अभी भी उनकी परछाइयाँ तो मैंने न जाने कितनी बार पढ़ी है।
जी,
ताजमहल, परछाइयाँ, हिरास, ये सब जो है मैं उनकी नज़में बहुत बार पढ़ी हैं मैंने। और ये लोग दरअसल आज के वक्त में हो क्या गया है कि ये जो मीडिया आ गया है
जी,
इस मीडिया ने एक तो फायदा बहुत किया एक बात, और ये मैं तस्लीम करता हूँ आपके सामने
जी,
ये फायदा तो बेशक बहुत हुआ लेकिन इससे एक नुकसान भी बहुत बड़ा हो गया। अब आप पूछेंगे कि नुकसान कैसे हो गया, वो भी मैं अर्ज करता हूँ आपके सामने कि नुकसान ये हो गया कि पहले ये होता था कि मुशायरों में जो लोग पढ़ते थे वो बड़े ही अच्छे और मुस्तनद शायर होते थे, यानी स्थापित होते थे, वो एक उनको एक समझ होती थी, एक शायरी की एक पढ़ा बड़ी मेहनत की होती थी और बड़े अरसे के बाद कोई पहुंचता था, इतनी कोई बहुत ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा छोटी उम्र में ही कोई पहुंच गया और बस कलाम पढ़ने लगा, ऐसा नहीं होता
जी,
था
जी।
उस्ताद होते थे जो बताते थे, सिखाते थे। अब जो है अब ये परंपराएं तो हो गई हैं खत्म
जी, ओवरनाइट बन रहे हैं सब कलाकार।
हाँ, और किताब भी पहले कोई ऐसे नहीं लिखता था, बड़े पुख्ता कलाम होते थे तभी वो किताब छापने की हिम्मत करते थे लोग। अब क्या हो गया, किताबें आ गई खुली, जिसने जरा सी चार लाइन लिखी वो अपना शुरू हो गई किताब छपवाना। और ये मेरे पास अलमारियां भरी पड़ी हैं ऐसे किताबों की कि जिनमें मतलब एक एक साहब तो बड़े मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बड़ी ही उम्र भी काफी है उनकी, वो है करीब 90 साल के।
अच्छा,
तो हमारे भी बड़े मोहतरम हैं, हालांकि मेरी उम्र नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी उम्र इतनी मगर मेरी मेरी दोस्तियां रही हैं बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोगों के साथ
जी।
तो वो उन्होंने तीन किताबें छपवाई तो मैं आपको भावना जी क्या बताऊं कि मैं क्या महसूस करता हूं कि उनकी तीन किताबों में मुझे एक भी शेर नहीं मिला। इतनी अफसोसनाक बात है कि एक आदमी तीन किताबें लिख चुका है और वो एक शेर नहीं आज तक कह पाया। शेर जिसको हम कहते हैं उसका बहर में होना बहुत जरूरी है
जी जी।
तो जब तक वो बहर में नहीं है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन जिसको हम कहते हैं वो पूरी नहीं होती तब तक उसे हम शेर नहीं कहते
जी।
मुझे भी नहीं मालूम था लेकिन ये पुराने और नए वक्तों में, अब ये तो पुराने लोग हैं लेकिन जब कभी शायरी सीखी ही नहीं और आज शायरी का माहौल ये कहता है कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं, कोई आपको बुलाए न बुलाए, आप अपनी साइट बनाइए और सारी जो शायरी लिखी है वो झोंक दीजिए।
बिल्कुल, ये तो ठीक कह रहे हैं।
तो इसका एक नुकसान क्या है कि जो नए लिखने वाले लोग हैं वो कहीं से तो देखेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, उनको वो सब गलत शायरी जो है सही शायरी कहकर परोस दी गई। अब उन्होंने वही सीख ली कि अब आप कुछ भी कहिए वो शायरी हो गई, तो शायरी तो इसका नाम ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि हमें एकेडमीज नहीं बुलाती, हमें बड़े मुशायरों में नहीं बुलाया जाता क्योंकि हम जानते नहीं हैं। ये गलत फहमी है उनकी
जी।
तो ये किसी को अगर आप बताएं कि आपने गलत लिखा है तो लोग बुरा मानते हैं
जी जी।
जबकि हम लोग आपके सामने हम बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, हमें तो डांट भी दिया करते थे जो हम पर अपना, मेरा कोई उस्ताद वैसे नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बहुत लोगों से शायरी सीखी है, सभी मेरे उस्ताद हैं, चाहे वो फिर मुजफ्फर रजमी साहब हों जिनका एक शेर है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये मुजफ्फर रजमी साहब का शेर जो आज तक का हिंदुस्तान का सबसे मकबूल शेर हुआ।
जी बिल्कुल सर।
और मुजफ्फर रजमी साहब के साथ भी मेरे जो ताल्लुकात थे वो हालांकि मुझसे उम्र में काफी बड़े थे मगर हम बहुत पक्के दोस्त थे।
अच्छा।
उनके इंतकाल के बाद बल्कि उनके घर से कांटेक्ट किया गया कि सरकार ने कांटेक्ट किया कि भाई आप बताइए कौन उनके कोई करीबी दोस्त कोई बताएं जिनसे कि हम उनकी ज़ाती जिंदगी के बारे में कुछ पता करें। तो उनके घर से कहा कि वो दोस्त तो ज्यादा कोई थे नहीं, उनके कोई नफस अम्बालवी साहब हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर लें, उनको पता कर लें। उन्होंने नंबर दे दिया मेरा, तो दिल्ली दूरदर्शन से फोन आया, कहने लगे कि ऐसे ऐसे हमें बताया गया है मगर आप तो इतनी उम्र के नहीं लगते
जी।
मैंने कहा जी ये बात सही है कि मैं इतनी उम्र का नहीं हूँ, लेकिन ये सच है कि मेरे जो उनसे रिश्ते थे वो दोस्ताना थे
जी। दोस्ती का सर उम्र से कोई वो नहीं होता मतलब।
हाँ तो ये पुराने लोगों में और नए लोगों में बस यही फर्क है कि आज गलत बहुत कुछ हो रहा है और पहले जो था वो एक तरह से जो सही चीजें थी वो परोसी जाती थी, वो बताई जाती थी, वो किताबों में आती थी। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप किताबें पढ़कर शायरी सीख लें क्योंकि किताबें गलत भी हो सकती हैं।
जी जी बिल्कुल,
ये फर्क है।
तो सर आपने बताया था मुझे कि आपको उर्दू लिखनी नहीं आती थी, फिर आपने बाद में सीखी, मतलब बचपन से आपने कोई उर्दू जुबान नहीं सीखी थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कैसे?
हाँ ये तो बड़ी एक बड़ी मजेदार कहानी है। देखिए मैं आपके सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि उर्दू और इसको हम अलग अलग कर लें हिंदी को, तो मैं हिंदी और उर्दू को बिल्कुल अलग अलग नहीं मानता। ये सब जो है हिंदुस्तानी जबान है। अब आप जो बोल रहे हैं, आप जो बात करते हैं, आप कहते हैं आज तो बहुत परेशान हो गए, आज तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, वो काम करना था
जी।
अब ये जो याद है ये भी जो है पर्शियन है और जो परेशानी है ये भी पर्शियन
जी
है।
जी
हम इसे हिंदी कहते हैं। हमारे जितने न्यूज चैनल हैं वो हिंदी न्यूज चैनल कहलाते हैं, लेकिन आपने सुना होगा आजकल के हालातों को देखते हुए।
जी बिल्कुल।
अरे भाई हालात तो इटसेल्फ जो है प्लूरल है, आप इसे प्लूरल से और क्यों इसको बढ़ा रहे हैं, इससे आगे कहाँ ले जाएंगे? हालत या हालात, तो हालत जो है वो सिंगुलर है और हालात उसका प्लूरल है। अब आप हालातों कर दें तो वो तो बहुत
गलत हो गया।
ये एक बड़ा एक आजकल चल रहा है, हम हिंदी और उर्दू के इस मानी को समझ नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ जो लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी जो जब हम पर्शियन में लिखते हैं उर्दू को उसे लोग उर्दू समझते हैं, लेकिन वो जो खुद बोल रहे हैं वो उसमें थोड़ी दिक्कत मानते हैं कि भाई वो शायद उर्दू नहीं है, वो हिंदी है
जी।
तो ये मेरा कहना है कि इसमें लिखने की बात यहाँ आई कि मैं एक मुशायरे में, शुरू में मैं एक मुशायरे में गया तो मेरे साथ एक हाफिज सहारनपुरी साहब थे, बड़े बुजुर्ग आदमी थे
जी।
कहने लगे कि नफा साहब आप इतनी अच्छी शायरी कर लेते हैं तो क्या आपने उर्दू पढ़ी है? तो मैंने कहा कि नहीं मैं उर्दू तो नहीं जानता। कहने लगे तो मेरा एक मशवरा है आपको, आप उर्दू जरूर रस्मुल खत समझें और इसे जाने ताकि आपके इसमें जितनी गलतियां होंगी
जी
वो दुरुस्त हो जाएंगी
जी।
आपको अब उसमें हम लोग हिंदी के जो लोग हैं ये जहाज लिख तो देते हैं ना, तो हमें ये मालूम होता है कि जहाज में ज पहले ज क्यों लगता है और बाद में ज क्यों लगता
जी,
है।
जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर,
है ना। दरअसल वो दो अलग अलग अक्षर हैं, एक में जो है वो जीम लग रहा है, दूसरे के अंदर जो है वो जे लग रहा है, हम इसे एक ही मान लेते हैं। तो ये जो चीज मुझे समझ आई, ये मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा कर लेता हूं मैं। और मैं मेरे एक मरीज थे बुजुर्ग से, वो कहने लगे मेरे पास कायदा पड़ा हुआ है आप पढ़े, तो मैं वो छोटा सा एक बिल्कुल 10 पेज का कायदा मुझे दे गए और मैंने वो पढ़ना शुरू किया और मुझे तो कुछ समझ ही ना आए कि ये कहाँ जा रही है।
जी।
एक शेर है कि चलिए खैर मैं याद आएगा तो
जी, आपको
सुनाऊंगा। तो वो मैं करते करते रोज प्रैक्टिस करना और फिर मैंने धीरे धीरे उसको सीखा तो मुझे समझ में आया कि इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम समझते हैं। दरअसल नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते है। ये दाग देलवी साहब का शेर है
जी, जी।
तो ये बड़ा एक अच्छा सा मेरी यादें हैं कि मुझे किसी ने कहा कि भाई आप अगर ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए, और मैंने फिर वो धीरे धीरे उर्दू सीखी, फिर मैंने अखबार लगाए, अखबारों से पढ़नी शुरू की, फिर मैं सारा दिन लिखता रहता था उर्दू में, लिखते रहना तो बस फिर आ गया थोड़ा थोड़ा। अभी भी मैं अपने आप को उर्दू दा नहीं मानता हूँ, हालांकि मैं उर्दू की किताब को मेरे अकेडमी अवार्ड भी मिला है
जी, जी।
और लेकिन फिर भाई बात आ जाती है कि हम जो बोलते हैं ये तो उर्दू है ही। अभी आप मेरा पूरा इंटरव्यू देखेंगे, मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें वैसे लफ्जों का इस्तेमाल न किया जाए
जी, जी।
ताकि आपके जो सुनने वाले हैं उन्हें आसान
जी बिल्कुल
जो जबान है वही रहे। थोड़ी सी हम मुझे बहुत ज्यादा इतना ऐसा ना सोचें कि मैं कोई बहुत बड़ा उर्दू का कोई उर्दू दा हूँ, ऐसा नहीं है। शायरी का जबान से ताल्लुक इतना ही है कि ये किसी जबान में तो शायरी होगी। आप हिंदी में करेंगे, पंजाबी में करेंगे, तमिल में करेंगे, उर्दू में करेंगे, अंग्रेजी में, यानी जितनी जबानें हैं मगर जो शायरी की खुशबू है वो वही है।
बहुत अच्छी बात,
उसमें फर्क नहीं होता
जी जी।
शायरी एक ही तरह की खुशबू लिए हुए होती है, वो शायरी होती है। हाँ बस उसके थोड़े से नियम कायदे अलग हो जाते हैं, यही फर्क है और कुछ नहीं
जी। सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा शायरी करते हुए, हमारे चुभन के पटल पर भी कई शायर आए, लेकिन पहली बार आपने ये बात कही कि लिखने का बहुत प्रभाव पड़ता है और मैं भी इस चीज को महसूस कर सकती हूँ कि जैसे आपने बताया कि जहाज में कहाँ जा होगा कहाँ जा होगा ये चीज का नहीं सबको पता होता और ये लिखने से ही ये बात आती है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे फादर भी जो है वो भी उर्दू जानते हैं, तो कभी मैं उनसे पूछती हूँ कि इस शब्द के नीचे लगेगा कि नहीं, तो वो ऐसे हाथ से ना लिखने का वो करते हैं, फिर मुझे बताते हैं कि हाँ इसके नीचे ऐसे होगा नहीं होगा, तो लिखने से ये चीज आती है, ये बात तो मैं भी समझ पाती हूँ। सर कोई अपनी कोई गजल या कुछ भी आप सुनाएं, बहुत देर हो गई आपको सुने।
अच्छा हाँ नहीं मैं जरूर सुनाऊंगा आपको, आप कहें क्या मैं आपको वही सुनाता हूँ। आप चलिए मैं आपको आज एक काम करते हैं कि मैं आपको एक हिंदी की अपनी बहुत पुरानी जो मेरी सबसे मैं जिसे समझता हूँ कि ये मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी
जी,
वहां से शुरू
बिल्कुल सर सुनाए
और फिर मैं ताजा कलाम जो मैं आज कहता हूँ मैं वो भी आपको आपके सामने हाजिर करूंगा। एक छोटी सी कविता है, ऐसा समझ लें कि एक 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा लिख रहा है।
अरे वाह,
कैसे लिखता है
जी,
इसमें कोई तरमीम नहीं हुई है, इसको कोई ठीक नहीं किया गया, ये वैसी की वैसी आज तक पड़ी है
जी।
और कविता सुने के सोचता हूं आज एक कविता लिखूं, सोचता हूं आज एक कविता लिखूं किसी नर्म से फूल की पांखुड़ी पर, कल्पना का अपनी बिछाकर बिछोना, किसी ओस की बूंद पर रख के सर को, सोचता हूं आज एक कविता लिखूं, या पर्वत के झरनों से करके दो बातें, पहाड़ी नदी में कलम को डुबोकर, किसी चीड़ की सर्द खामोशियों पर, सोचता हूं आज एक कविता लिखूं, या कोहरे की फैली हुई धुंध के बीच, किसी राह में सूखे पत्ते बिछाकर, उसी राह की अजनबी दूरियों पर, सोचता हूं आज एक कविता लिखूं। और आखिरी है कि बियाबान जंगल में जलते दिए सी, बियाबान जंगल में जलते दिए सी, किसी मृत की तृष्णा सी बेचैन कविता, शिशु के अधपके फड़फड़ाते परों पर, सोचता हूं आज एक कविता लिखूं।
सर शुरुआत से इतनी गहराई थी और इतनी परिपक्वता थी वास्तव में आपकी रचना में, सच में कह रही हूँ, नहीं लग रहा है कि ये
10वीं या 11वीं में मैंने ये इलाहाबाद में लिखी थी, तो ये मैं आज पहली मर्तबा मैं कोई हिंदी की कविता जो है मैं किसी के
साथ, सर ये तो हमारा सौभाग्य है, फिर
साझा कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी भी होती है आपसे बात करते हुए। मुझे एक तो ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं कोई इंटरव्यू जैसी कोई चीज दे रहा हूँ।
जी सर ऐसा है भी नहीं, इतनी मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं इंटरव्यू लूँ आपका।
नहीं नहीं ऐसा नहीं,
नहीं सर बिल्कुल, मुझे भी बहुत तो अच्छा लगा।
एक शेर सुनाता हूँ भावना जी, के ये वो शेर है, एक शेर जो बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा, इसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया था। और
जी सर ये मैं पूछने वाली थी, एक आप किसी जनसभा में प्रधानमंत्री जी ने आपका कोई शेर पढ़ा था सर शायद, है ना?
जी जी
हाँ वो सुनाए सर, वो जरूर सुनाए।
हाँ वो मैं वो मेरे याद आ गया कि मैं उस शेर से शुरू कर सकता हूँ, कि वो शेर दरअसल पहले ही इतना मकबूल था, वो प्रधानमंत्री जी तक कैसे पहुँचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, बड़ी इज्जत की बात है कि
बहुत बहुत सर बहुत गौरव की बात है हम सबके लिए भी।
जी वो शेर यूं है कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। और ये शेर एक और मैंने इसमें दो एक शेर और डाले हैं, लेकिन ये किसी ने सुने नहीं होंगे अभी तक, तो जो मकबूल है वो यही दो मिसरे हैं। और शेर यूं है कि मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है, मैं रुक गया तो बदन टूटने लगा मेरा, मैं रुक गया तो बदन टूटने लगा मेरा, अब एक सफर में हूं जब से थकान कुछ कम है, मैं रुक गया तो बदन टूटने लगा मेरा, अब एक सफर में हूं जब से थकान कुछ कम है। और एक शेर और समाज फरमा लें कि मोहब्बतों की कहीं सरहदें नहीं होती, मोहब्बतों की कहीं सरहदें नहीं होती, जो बांटनी हो तो सारा जहान कुछ कम है, मोहब्बतों की कहीं सरहदें नहीं होती, जो बांटनी हो तो सारा जहान कुछ कम है। बहुत शुक्रिया। तो ये वो शेर थे जो बड़े मकबूल हुए, और मेरे और भी बहुत से शेर हैं जो काफी लोगों ने सुने। और
सुनाए थोड़ा कुछ और सुनाए।
जी मैं सुनाता हूँ आपको, मेरा एक शेर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जरूर, के मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, मरने को मर भी जाऊं कोई मसला नहीं, लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं।
बहुत सही सर।
लेकिन ये तय तो हो कि अभी जी रहा हूं मैं। और एक और शेर सुने के मैं इस तरह का लिखता हूं आजकल, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह की शायरी कर रहा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि बड़ी शिद्दत से नफरत बांटते फिरते हैं दुनिया में, बड़ी शिद्दत से नफरत बांटते फिरते हैं दुनिया में, उसी जज्बे से लोग आखिर मोहब्बत क्यों नहीं करते। बड़ी शिद्दत से नफरत बांटते फिरते हैं दुनिया में, उसी जज्बे से लोग आखिर मोहब्बत क्यों नहीं करते। और एक शायर में ना एक बड़ी एक चीज होती है, अना बड़ी जबरदस्त होती है। वो जैसे आपने कहा ना कि सागर सिद्दीकी साहब ने मना कर दिया कि भाई मैं अब मैं नहीं जाऊंगा, बस कोई है आप मना बोल दीजिए कि ये ले जाइए शेर और ये सुन। ये शायरों के अंदर होता है, सभी में होता है मुझे लगता है। तो मुझ में भी है कहीं ना कहीं कुछ, तो मैं कभी कभी ऐसी चीजें लिख देता हूँ। कई बार ऐसे हादसा हो जाते हैं, लोग कुछ कहते हैं तो उन्हें जवाब भी देना होता है। तो मैंने एक जगह कहीं लिखा, मैंने कहा उन्हें कि एक कतरा था तो मैं तुमसे संभाला न गया, एक कतरा था तो मैं तुमसे संभाला न गया, अब समंदर हूं तो क्या हाक संभालोगे मुझे। इस तरह के जो शेर हैं ये मैं अक्सर
बहुत सुनता हूँ।
ये जो कोरोना का एक वक्त चल रहा है
जी,
तो जब पिछला लॉकडाउन खत्म हुआ, तो जब वो चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस दौरान ये था कि चलिए अब ये सब खत्म हो ही जाएगा कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन ये कभी तो खत्म होगा। तो बड़े लोग, बड़े शायर जो थे वो कोई लॉकडाउन पर लिख रहा था, कोई कोरोना पर, बड़े तरह के शेर आए। आपने भी पढ़े
जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आए सर।
हाँ, एक शेर मैं आमतौर पर नहीं कहता इस तरह की, मैं अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं करता शायरी में
जी।
लेकिन एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आप देखेंगे, आप सुनिए। मर ही जाऊं इतना भी गमगीन मत करना मुझे, मर ही जाऊं इतना भी गमगीन मत करना मुझे, जिंदगी अब और क्वारंटीन मत करना।
बहुत सही लिखा सर।
ये लव जो है क्वारंटीन, हम डॉक्टर होते हुए भी हमने कभी सुना नहीं था
जी। जी बिल्कुल,
तो ये हमने भी पहली बार सुना। और मैंने इसे जब शेर में कहा तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपने अदब की जो इज्जत है वो भी रखी और आपने लफ्ज इस्तेमाल भी कर लिया और कहीं लगता भी नहीं कि ये उर्दू शायरी का नहीं है।
जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोरोना के ऊपर काफी शेर और कविताएं पढ़ने सुनने को मिली, लेकिन इस तरह का वाकई पहली बार मैं भी सुन रही हूँ। लगा नहीं कि कुछ अजीब सा है। और क्वारंटीन तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ इंग्लिश या हिंदी या किसी भाषा का ना होकर ये तो हमारी जिंदगी का एक शब्द बन गया है।
जिंदगी का एक शब्द बन गया, सही फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल। दो एक चीजें और आपको सुनाकर फिर मैं आपको गजल और या कुछ और थोड़ा सुनाता हूँ, एक दो शेर और सुन
लीजिए।
एक शेर में आज की नजर करना चाहता हूँ कि मैंने ये लिखा था, एक जो वुमेन्स डे होता है वर्ल्ड वुमेन्स डे, तो उसके लिए मैंने ये लिखा था और ये बहुत बहुत दूर तक गया। शेर यूं है कि वतन वालों इसे तुम बेकसो मजलूम मत समझो, वतन वालों इसे तुम बेकसो मजलूम मत समझो, यही औरत किसी दिन मुल्क की तकदीर बदलेगी।
बहुत सही।
ये शेर हुआ। एक और शेर देखें कि मजदूरों के लिए, बहुत से शेर हैं मेरे
जी,
मगर उनमें एक शेर जो बड़ा मकबूल हुआ वो ये था कि अब उनकी ख्वाबगाहों में कोई आवाज मत करना, अब उनकी खाबगाहों में, खाबगाह कहते हैं जहां सोने की जगह होती है।
अच्छा जी।
अब उनकी ख्वाब गाहों में कोई आवाज मत करना, बहुत थक हार कर फुटपाथ पर मजदूर सोए हैं। नहीं, मैं एक शेर आपको और सुनाकर मैं कुछ आपको और सुनाता हूँ। मैंने एक शेर कहा कि भीड़ सोने की दुकानें देखने में खो गई, भीड़ सोने की दुकानें देखने में खो गई, मैं तो मिट्टी के दिए लाया था इस बाजार में। भीड़ सोने की दुकानें देखने में खो गई, मैं तो मिट्टी के दिए लाया था इस बाजार में। चलिए मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। वैसे एक शेर मुझे याद आता है कि कुछ शायरी जो है ना, बड़े जुनूनी लोगों का काम है।
बिल्कुल सर।
मुझे एक शेर याद आया, वो है शायद जावेद भाई का है। आप देखें कि शायरी कार्य जुनून है। कार्य जुनून मतलब जुनून का काम है, जुनून का काम है।
जी जी।
शायरी कार्य जुनून है, आपके बस की नहीं। शायरी कार्य जुनून है, आपके बस की नहीं। वक्त पर बिस्तर से उठिए, वक्त पर सो जाइए। जी
हम लोगों के बस की तो नहीं है इसका मतलब।
नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है आपकी बात नहीं, ये तो शेर है।
बिल्कुल ठीक सर, सही बात है सर। ये जो ऐसा जुनून है कि जिसके सर चढ़े वही बोलेगा।
चलिए खैर, अब आपके सुनने वाले तो आ ही गए हैं। एक शेर मुझे याद आता है कि मोम के लोग कड़ी धूप में आ बैठे हैं, मोम के लोग कड़ी धूप में आ बैठे हैं, आओ अब इनके पिघलने का तमाशा देखें।
बहुत सही था।
तो चलिए आपके सुनने वालों को कुछ सुनाया जाए। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, इसमें कुछ एक लफ्ज जरूर है जो शायद समझने की दिक्कत हो। एक मिसरा एहसानी एक लफ्ज होता है, मिसरा एहसानी। हम जब शेर कहते हैं उसमें एक पहला मिसरा होता है, एक दूसरा मिसरा होता है। सानी कहते हैं किसी का कोई सानी नहीं है, मतलब दूसरा नहीं है।
अच्छा।
तो जो मिसरा एहसानी है उसको, वो है दूसरा, जो दूसरी पंक्ति होती है उसको मिसरा एहसानी कहते हैं।
जी जी।
लेकिन वो होती पहली पंक्ति नहीं है, दूसरी पंक्ति होती है।
जी।
अब देखिए दूसरी पंक्ति के लोग किस तरह की बात सोचते हैं और कैसी बात कहते हैं।
जी।
एक शेर है, मैं बड़े अजीब अजीब शेर कहता रहा हूँ, ये भी उनमें से एक ही है कि तहरीर हूं पत्थर पे जबानी का नहीं हूं, तहरीर हूं पत्थर पे जबानी का नहीं हूं, मैं लफ्ज किसी मिसराए सानी का नहीं हूं। तहरीर हूं पत्थर पे जबानी का नहीं हूं, मैं लफ्ज किसी मिसराए सानी का नहीं हूँ। क्यों अपने फसानों में मुझे ढूंढ रहा है, क्यों अपने फसानों में मुझे ढूंढ रहा है, किरदार ही मैं तेरी कहानी का नहीं हूँ।
बहुत सुंदर।
क्यों अपने फसानों में मुझे ढूंढ रहा है, किरदार ही मैं तेरी कहानी का नहीं हूँ। मिलने को तो दरियाओं से भी मिलता हूँ हंसकर, मिलने को तो दरियाओं से भी मिलता हूँ हंसकर, हालांकि तलबगार मैं पानी का नहीं। बहुत शुक्रिया।
बहुत सुंदर।
मिलने को तो दरियाओं से भी मिलता हूँ हंसकर, हालांकि तलबगार मैं पानी का नहीं हूँ। और ये शेर आपके लिए के चेहरे से ही मफहूम समझ लेता हूँ दिल का, चेहरे से ही मफहूम कहते हैं तात्पर्य।
अच्छा।
या कोई बात को जैसे तात्पर्य, चेहरे से ही मफहूम समझ लेता हूँ दिल का, मोहताज ही मैं लफ्जों मुआनी का नहीं
हूँ। जी सर।
चेहरे से ही मफहूम समझ लेता हूँ दिल का, محتاج ہی میں لفظ و معانی کا نہیں ہوں، ایک ریت کا صحرا ہے میرے جسم کے اندر، ایک ریت کا صحرا ہے میرے جسم کے اندر، منظر میں کسی شام سہانی کا نہیں ہوں.
بہت سندر سر.
چلیے اب جیسا بھی ہے آپ کو سنا دیا.
بہت سندر سر. ویسے بھی ہم لوگ تو اودھ سے ہیں، آپ کو پتا لکھنوا سنسکرتی، تو ویسے ہی اردو زبان اور شعر و شاعری کے شوق رکھنے والے ہم لوگ، اور آپ کو تو سننا مطلب میرا سوبھاگیہ کہ میں آپ کو سن پا رہی ہوں، ایسے سامنے سے سن پا رہی ہوں.
بلکہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا جب ہماری فون پر بات ہوئی کہ آپ بہت یہ ایک ادب کی بڑی خدمت کر رہی ہیں، اور جیسے پہلے ڈاکومنٹس تیار ہوتے تھے یا شیلالیکھ لکھے جاتے تھے، تو اب تو جو شیلالیکھ تو اب نہیں ہوتے، اب پتھروں پہ کون تحریر کرتا ہے.
اب تو یہی ہو گیا، اب تو یہ کیا بولا جائے، ان سے ہی بس اب ہو گیا سب کچھ سر.
جی اب تو نیٹ کے اوپر ہی ہے جو کچھ بھی ہے، تو آپ اچھے سے اچھا اسے آپ سنجو رہی ہیں، یہ بھی ایک طرح کے.
نہیں سر، اور آپ جیسے لوگوں کا مجھے اتنا اسنیہ آشیرواد ملتا تب کچھ کر پاتی ہوں، نہ تو میں کہاں کچھ کر سکوں.
جی
بہت آپ لوگوں کی آبھاری ہوں کہ آپ لوگ اتنا سمے اپنا دیتے ہیں. اور سر آپ نے مجھے بتایا تھا کل کہ آپ 18-20 سال جو آپ کا گیپ آیا آپ نہیں لکھ سکے، تو شاید پھر آپ کو بشیر بدر صاحب نے لکھنے کے لیے پریرت کیا تھا.
ہاں نہیں، اس کا تو دراصل کچھ اس طرح سے قصہ ہوا کہ میں اپنا لگ گیا ڈاکٹر جیسے ہوتے ہیں، سارا دن مریض دیکھنا، دن رات کام کرنا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا، میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ ہم لوگ دونوں جنے لگے رہتے تھے. کبھی کبھی تو ہم لوگوں کو دو دو تین تین دن رات سونے تک کو نہیں ملتا تھا، اتنا ہم بزی رہتے تھے. تو ایک میں کہیں مجھے بلایا گیا، ایک کوئی نشست تھی، کچھ کوی اور شاعر جو اکٹھا ہوئے وہ گھر میں اپنا کسی کے بیٹھے، تو 10-15 لوگ 20 لوگ ہوں گے. تو انہوں نے مجھے بڑے احترام انہوں نے مجھے بلایا کہ بھئی آپ آئیے، اور بھئی ایک بڑے ڈاکٹر ہیں اور جیسے سمان کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا. اور آج جو ہے آپ صدارت فرمائیں گے، اور آج ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں آپ. تو میں نے کہا جی چلیے، یہ تو کرتے رہتے ہیں ہم، تو کر لیتے ہیں آج کبھی سمیلن کے ہی کی صدارت کر لیتے ہیں.
جی
تو میں بیٹھا، تو وہ جب سنانے لگے تو میں نے، میرا اسسٹنٹ پاس کھڑا تھا، میں نے کہا بیٹا ایسا کرو، جاؤ اور نہ وہاں گھر پہ میڈم کو بولنا، ایک ہری پھٹی ہوئی سی ایک ڈائری پڑی ہوگی وہ فلاں فلاں الماری میں، وہ نکال کے دے. انہوں نے نکالی اور وہ بھجوا دی میرے پاس. تو اس میں کچھ میرے کالج کے زمانے کے کچھ لکھی ہوئی چیزیں پڑی تھی، میں نے انہیں سنائی، وہ بڑے متاثر ہوئے. وہ کہنے لگے آپ تو بڑا اچھا لکھتے ہیں، آپ آیا کریں. تو میں نے کہا، ابھی وہ جھجک سی ہو رہی تھی کہ کریں کیا کیسے کریں، وہ اندر سے تو سب بھرا رہتا تھا نا.
جی جی.
تو ہمارے یہاں ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا امبالہ کینٹ میں، انڈو پاک مشاعرہ. پاکستان سے شاعر آتے تھے، بڑے 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 شاعر آتے تھے.
جی جی.
یہاں تمام کیفی اعظمی اور بہت بڑے بڑے نام، جتنے بڑے نام ہیں وہ سب آتے تھے.
جی.
تو وہاں وہ مشاعرہ تھا، اور شاید یہ 92 کی بات ہے.
جی جی.
2002 کی. ہاں 2002 کی. تو بشیر بدر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور اس میں ساگر خیامی صاحب اور بڑے بڑے تمام شعرا جتنے بھی ہیں وہ سب آئے ہوئے.
جی.
تو مجھے بشیر بدر صاحب سے میں پہلے بھی ملا ہوں، وہ جب میں کالج میں اسٹوڈینٹ تھا تب بھی ملتا تھا.
جی.
وہ کبھی ریڈیو اسٹیشن آتے تھے وہاں، تو میں ان سے ملنے چلا جاتا تھا، اور میری، ہم تو بچے تھے، وہ کیا وہ ہم سے بہت بڑے ہیں آج بھی.
جی.
تو وہاں میں پہنچا اور میں ان کے آٹوگراف لینے لگا، تو وہ ڈائری لے کے بیٹھ گئے. میری ایک تصویر ہے، میں نے آپ کو بھیجی ہے.
جی.
وہ تصویر وہی ہے جب میں اوپر بیٹھا ہوں، ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے نیلے رنگ کی، وہ میری ہے، اس پر ان کو آٹوگراف دینے ہیں. جی. مگر وہ رکھ کے ہی بیٹھ گئے، انہوں نے دی نہیں مجھے واپس.
جی.
और सामने सागर खयामी साहब जो हैं वो शेर पढ़ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, सागर खयामी इतना बड़ा हिंदुस्तान का शाहकार नाम है कि मुझे उन लोगों के पास बैठने का मौका मिला कदम बोसी का, तो मैं बैठा रहा तो उन्होंने वो दो तीन चार बार पलटी फिर बंद करके रख दी, फिर सुनते रहे उनको। कहने लगे अरे लिखते हो तुम भी? मैंने कहा जी थोड़ा बहुत लिखता हूँ। तो कहने लगे फिर वो कोई मजमुआ नहीं छपवाया? उनका मतलब था मजमुआ है तो दे दो भाई मुझे और मैं बाद में तुम्हें भेज दूंगा।
मतलब कोई किताब सर मजमुआ मतलब?
हाँ हाँ वो जिसको शायरी संग्रह बोलते हैं।
जी जी
हाँ। तो मैंने कहा जी अभी तो मैं कहाँ से छपवाऊँ, मुझे तो अभी शायरी नहीं आती। कहने लगे नहीं शायरी तो ठीक है ऐसा तो थोड़ा बहुत चलता है, आप अपना ये किसी से वो थोड़ा रब्ता करें और ये सब ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है बड़ी। और गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो एक मिसरा जो है शेर का उन्होंने बोल दिया। तो मुझे तो बहुत उससे तवानाई मिली और मैं फिर शायरी शुरू की बाकायदा। और अब मुझे तकरीबन 20 साल हो गए शायरी को दोबारा से शुरू किए हुए।
जी जी
तो इस तरह से मैंने दोबारा से शायरी शुरू।
तो सर जो आपने कॉलेज टाइम की डायरी मंगाई थी उसमें से अगर कुछ सुना सके?
हाँ वो मैंने आपको सबसे पहले जो कविता सुनाई थी
वो तो आपके, अच्छा वो तो हाई स्कूल इंटर की आपकी कविता थी, उसके बाद का कुछ नहीं था कॉलेज टाइम का?
हाँ नहीं ये 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 वहीं से शेर आए हुए हैं कुछ। मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि जो हम पढ़ते हैं, मुझे कुछ मैंने एक दो निकाले हैं आपके लिए।
जी जी सर सुनाएं।
पहले आप एक मतला और एक शेर सुने के मगर थोड़ा आपको अगर अच्छा लगे तो आप थोड़ा उसमें मुझे मेरा हौसला अफजाई जरूर
करें। बिल्कुल
आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे
नहीं नहीं सर मैं तो इतना सुनने में डूब नहीं नहीं सर मैं डूब जाती हूँ इतना सुनने में, खामोश नहीं होती हूँ।
नहीं 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 शायरी सुनने का सलीका ये है कि आप जब तक मुंह से वाह नहीं कहेंगी अगला शेर आ ही नहीं सकता।
चलिए सर अब वाह वाह करेंगे।
तो जो अगला मिसरा है, जो पहला मिसरा होता है, पहली लाइन होती है
जी जी,
वो बोलने के बाद अगर कोई उस मिसरे को ना उठाए, उसको रिपीट ना करे, तो अगला मिसरा बोलने का हक ही नहीं है शायर का।
जी
आपने देखा होगा कि आमतौर पर क्या होता है कि जब हम शेर सुनाते हैं तो जो सामने लोग बैठे सुन रहे होते हैं उसमें से कई लोग जो हैं वो बोलते हैं, उसको रिपीट करते हैं
जी,
उसको कहते हैं मिसरा उठाना।
अच्छा
तब वो दूसरा जो मिसरा है वो तब आता है, शायरी आपको समझ ही तब आएगी
जी,
जब
जी।
तक आप शायरी को सुनने का सलीका नहीं आएगा शायरी किसी को समझ नहीं आती।
जी जी
शायरी बड़ी बोर चीज लगती है मगर हमें क्यों नहीं लगती, क्योंकि हम उसे उसी तरह से सुनते भी हैं और उसी तरह से।
पर सर मुझे तो नहीं बोर लग रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
जी बहुत शुक्रिया। फिर मैं सुनाता हूँ
जी सर, बिल्कुल सुनाए
वरना हौसला टूटने लगता है।
नहीं नहीं सर बिल्कुल, ऐसा कहकर मुझे
बहुत हो गया।
जी जी
और जी ये सुने आप एक मतलब और एक शेर के। मैं जब चला था तो इतना गुबार था भी नहीं, मैं जब चला था तो इतना गुबार था भी नहीं, इन आंधियों पे मुझे ऐतबार था भी नहीं, उसी के सामने सजदों में झुक रहे थे लोग, उसी के सामने सजदों में झुक रहे थे लोग, मेरी नजर में जो परवरदिगार था भी नहीं।
बहुत।
और एक शेर जो बहुत मकबूल हुआ वो ये कि मुझे ही शाम को घर लौटने की जल्दी थी, मुझे ही शाम को घर लौटने की जल्दी थी, किसी को जबकि मेरा इंतजार था भी नहीं।
बहुत सुंदर सर,
बहुत शुक्रिया। मुझे ही शाम को घर लौटने की जल्दी थी, किसी को जबकि मेरा इंतजार था भी नहीं। चलिए एक एक मेरा शेर बड़ा मकबूल हुआ, वो शेर मेरी बेटी के नाम है।
जी जी सुनाए सर।
और मैं उसके लिए ये दो तीन शेर आपके सामने पढ़ता हूँ, एक मतलब पहले और उसके बाद भी वो शेर के। न जाने कब की दबी तलखियां निकल आईं, तलखियां कहते हैं कड़वाहटें
जी, कड़वा,
न जाने कब की दबी तलखियां निकल आईं।
जी जी,
न जाने कब की दबी तलखियां निकल आईं, जरा सी बात थी और बर्छियां निकल आईं। हुआ ये हम पे अंधेरों की साजिशों का असर, हुआ ये हम पे अंधेरों की साजिशों का असर, हमारे जहन में भी खिड़कियां निकल आईं।
बहुत
ये वो शेर है कि मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आईं।
वाह सर, बहुत सुंदर सर, हर बेटी के लिए ये गर्व की बात है।
हाँ, मैं आज भी इसको पढ़ता हूँ तो मेरा गला भर आता है और मैं अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत करता हूँ और परमात्मा उसको उम्र दराज करे, उसको तमाम खुशियां अता करे। मेरी जिंदगी में जो कुछ है मेरी बेटी की बदौलत है ये इतने मैं उससे इतना ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ।
बहुत भाग्यशाली है आपकी बेटी।
मुझे नवाज दी मौला ने फूल सी बेटी, मेरे हिसाब में कुछ नेकियां निकल आई। वो पेड़ जिस पे कजा बन के बिजलियां टूटी, वो पेड़ जिस पे कजा बन के बिजलियां टूटी, सुना है उस पे हरी पत्तियां निकल आई।
बहुत सुंदर सर।
वो पेड़ जिस पे कजा बन के बिजलियां टूटी, सुना है उस पे हरी पत्तियां निकल आई। खुदा के वास्ते अब तो सफर तमाम करो, खत्म करो।
जी जी,
खुदा के वास्ते अब तो सफर तमाम करो कि अब तो कफ से भी उंगलियां निकल आई। कफ कहते वो जो जूते होते नीचे पैरों में से।
अच्छा अच्छा।
खुदा के वास्ते अब तो सफर तमाम करो कि अब तो कफ से भी उंगलियां निकल आई।
जी,
ये शायरी मेरी रही और मैं चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे कलाम सुनाता हूँ जो मैं आजकल लिख रहा हूँ और काफी वक्त से लिख रहा हूँ। मेरी शायरी ज्यादातर जो है वो बहुत ही अफसुर्दा यानी गमगीन शायरी है और जिंदगी में जो दिया मैंने वही लिखा, मैंने कुछ बनाया नहीं कभी।
जी जी,
कोशिश भी नहीं की बनाने की कि कुछ बना कर लिखा जाए।
नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानती क्या शब्द कहा जाएगा उर्दू में, लेकिन जैसे यथार्थ पर है कि आपकी जो बिल्कुल जिंदगी की सच्चाई है उसके ऊपर मैं देख रही हूँ इस चीज को। आप जितने भी शेर आपने शुरू से सुनाए सब बिल्कुल जिंदगी के यथार्थ के ऊपर लागू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर सुनने में।
नहीं, मैं आपको कुछ शेर सुनाऊंगा उसी अंदाज के सुनाऊंगा भी कि मैं किस तरह की शायरी करता रहा हूँ।
जरूर,
मगर मैं आजकल कुछ इस तरह से भी लिख रहा हूँ कि दरारें पड़ भी सकती हैं, ये दिल में डर नहीं रखा। दरारें पड़ भी सकती हैं, ये दिल में डर नहीं रखा। सियासत तेरी साजिश ने ही घर को घर नहीं रखा। दरारें पड़ भी सकती हैं, ये दिल में डर नहीं रखा। सियासत तेरी साजिश ने ही घर को घर नहीं रखा। पड़ी हैं मुश्किलें हम पर भी, लेकिन हाँ कभी हमने पड़ी हैं मुश्किलें हम पर भी, लेकिन हाँ कभी हमने अमीरे शहर की चौखट पे अपना सर नहीं रखा।
बहुत सुंदर, वो सागर सिद्दीकी साहब वाली बात यहाँ पर लागू हो गई सर।
बहुत शुक्रिया। पड़ी हैं मुश्किलें हम पर भी, लेकिन हाँ कभी हमने अमीरे शहर की चौखट पे अपना सर नहीं रखा। हमारे सामने एक सिलसिला था कोहसारों का, कोहसार कहते हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनको।
जी जी,
हमारे सामने एक सिलसिला था कोहसारों का, मगर हमने किसी की राह में पत्थर नहीं रखा। हमारे सामने एक सिलसिला था कोहसारों का, मगर हमने किसी की राह में पत्थर नहीं रखा। और जिसे अपना कहा دل میں اسے محفوظ رکھا ہے. جسے اپنا کہا دل میں اسے محفوظ رکھا ہے, چھپا کر آج تینوں نے کبھی خنجر نہیں رکھا.
بہت سندر سر, بالکل آج کے حالات.
جسے اپنا کہا دل میں اسے محفوظ رکھا ہے, چھپا کر آج تینوں میں کبھی خنجر نہیں رکھا.
بہت سندر.
اس طرح کی شاعری میں آج کل کر رہا ہوں, اور عموماً جو میری شاعری کا جو ایک مزاج رہتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مجھے ایک اپنی غزل کے کچھ یاد آ رہے ہیں, میں نے یہاں رکھے ہوئے نہیں ہیں, میں وہ آپ کو سناتا ہوں. کہ عمر بھر درد کے رشتوں کو نبھانے سے رہا, عمر بھر درد کے رشتوں کو نبھانے سے رہا, زندگی میں تو تیرے ناز اٹھانے سے رہا.
بہت سندر سر, بہت صحیح.
عمر بھر درد کے رشتوں کو نبھانے سے رہا, زندگی میں تو تیرے ناز اٹھانے سے رہا. اور شعر دیکھیں کہ جب بھی دیکھا تو کناروں پہ تڑپتا دیکھا, جب بھی دیکھا تو کناروں پہ تڑپتا دیکھا, یہ سمندر تو میری پیاس بجھانے سے رہا.
بہت سندر سر, بہت سندر.
یہ شعر, یہ جو شعر ہے یہ ہمارے کنور بے چین جی کو بہت پسند.
جی جی, میں نے پڑھا سر, اس میں آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کنور بے چین جی نے شعر کو وہ کر کے, بالکل میں نے دیکھا سر.
ہاں, یہ کنور بے چین جی کو بہت پسند تھا, میں جب بھی کبھی ان کے سامنے پڑھتا ہے وہ کہتے تھے یہ شعر پھر پڑھو.
جی سر, ایک بار پھر ہمیں بھی سنائے سر, بہت اچھا لگا. ایک بار پھر سے شعر پھر سے سنا دیں.
عمر بھر درد کے رشتوں کو نبھانے سے رہا, زندگی میں تو تیرے ناز اٹھانے سے رہا, جب بھی دیکھا تو کناروں پہ تڑپتا دیکھا, یہ سمندر تو میری پیاس بجھانے سے رہا.
بہت سندر سر.
بس یہی سوچ کے سر اپنا قلم کر ڈالا, بس یہی سوچ کے, بس یہی سوچ کے سر اپنا قلم کر ڈالا, اب وہ الزام میرے سر تو لگانے سے رہا.
بہت سندر سر.
بس یہی سوچ کے سر اپنا قلم کر ڈالا, بس یہی سوچ کے سر اپنا قلم کر ڈالا, اب وہ الزام میرے سر تو لگانے سے رہا. اس زمانے میں بھانا جی, اس زمانے میں جہالت سے گزر ہوتی ہے.
جی جی,
اس زمانے میں جہالت سے گزر ہوتی ہے, اب ہنر سے تو کوئی گھر کو چلانے سے رہا.
بہت صحیح سر, بہت صحیح, بالکل ٹھیک کہا سر.
بہت شکریہ. اس زمانے میں جہالت سے گزر ہوتی ہے, اب ہنر سے تو کوئی گھر کو چلانے سے رہا. یہ آپ کے لیے خاص طور پر اور تمام سننے والوں کی نظر یہ شعر کے ہم ہی ترکیب کریں کوئی اجالوں کے لیے, ہم ہی ترکیب کریں کوئی اجالوں کے لیے, اب اندھیرا تو چراغوں کو جلانے.
بہت سندر سر.
ہم ترکیب کریں کوئی اجالوں کے لیے, اب اندھیرا تو چراغوں کو جلانے سے رہا. یہ میری جو شاعری ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک واحد ایسا شاعر ہوں ہندوستان کا جس نے کہ بہت ہی کم شعر کہے ہیں, رومانی شعر بہت کم کہے ہیں.
جی جی,
ابھی تک تو میں نے کوئی بھی شعر نہیں پڑھا, میرا خیال ہے.
بالکل نہیں.
شاعری کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے رومانیت جو ہے, کہ پہلے جو شاعری ہوتی تھی وہ ہوتی تھی شاعری غزل جو ہے, خاص طور پر غزل کی بات کروں کیونکہ میں غزل کا شاعر ہوں.
جی جی,
غزل کا مطلب ہی ہوتا ہے محبوب کی بات چیت یا محبوب سے بات چیت.
جی,
تو اس میں جو ہے ذکر آ جاتا ہے محبوب کی خوبصورتی کا, اس کی آنکھوں کا, اس کے بالوں کا, اس کے رخسار کا, اس کے حسن کا اور تمام چیزیں. اور ایک اور پہلو ہے, وہ ہے تھوڑا روحانی ہے لیکن اس میں شراب اور میخانہ, میخانہ جو ہے وہ ایک دنیا کا پرتیک ہے, اور جو شرابی ہیں وہ تمام वो लोग हैं जो इश्क करते हैं,
जी जी
वो इश्क किसी औरत से करते हैं, आदमी से करते हैं, अपनी माँ से करते हैं, बाप से, अपने बच्चों से करते हैं, खुदा से, ईश्वर से, वाहेगुरु से, इश्क के तो बहुत आयाम हैं।
जी बिल्कुल सर।
तो शराबी उनको कहा जाता है, ये एक तरह की उपमाएं दी गई हैं। लेकिन ये बहुत अहम पहलू होते हुए भी मैंने इन तमाम जो ये मौजू हैं, ये जो क्या कहना चाहिए, विषय जितने भी हैं,
जी जी,
इन विषयों को मैंने अपनी मैं हिंदी में कई बार थोड़ी गड़बड़ कर देता हूँ, मगर फिर भी मैं उनको थोड़ा उनसे दूर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैंने बिल्कुल ही शेर नहीं कहे कहे हैं। मुझे एक शेर याद आता है अपना, के छू लिया था एक दिन उसका बदन, छू लिया था एक दिन उसका बदन, उसकी खुशबू आज तक हाथों में है। तो ये जो शायरी है, दरअसल ये शायरी का सबसे अहम पहलू यही है।
जी जी।
लेकिन अगर हम नए दौर की शायरी में देखें, साहिर लुधियानवी से, या अगर हम कहें कि ये गालिब से शुरू हुआ, गालिब के बाद, गालिब अपने वक्त के जदीद शायर थे, बिल्कुल नए शायर थे, नई शायरी वो लेकर आए।
जी।
और उसके बाद बहुत से लोग हैं जो हमारी जो आजादी की जंग हुई इस दौरान, बहुत सारे लोग हैं जिसमें के कैफी आजमी साहब हैं या जिगर साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा बहुत कुछ लिखा। इसमें साहिर लुधियानवी साहब हैं, उनके बड़े, आप कभी पढ़िए आप उनको, साहिर लुधियानवी को, आपको बड़ा कुछ मिलेगा।
जी बिल्कुल सर।
वहां से उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है, उनकी परेशानियां कभी आप पढ़ें पूरी
जी,
तो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने लोग इसे सुन रहे हैं वो जरूर साहिर लुधियानवी की शायरी को पढ़ें और महसूस करें कि वो भी एक अलग तरह का एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
शायरी में तो हम लोग उसी दौर के शायर हैं, उन्हीं को, उन्हीं के नक्शे पा पर हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग भी, हमारा ये रहता है कि अब देखिए इतनी मुश्किलात हैं जमाने में, इतनी सारी परेशानियां हैं, हमारे आबो हवा आप देखिए कि हमारे समाज की किस कदर नफरतों से भरती जा रही
है। सर बिल्कुल।
और गुर्बत जो है, लोगों को आज भी इतने वक्त के बाद भी ऐसी जगहें हैं जहां हमें खाने को रोटी नहीं है और लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं,
जी,
इतनी सारी चीजें हैं। मजदूर है, आज भी मजदूरी उसको पूरी नहीं मिल रही है।
जी, जी।
तो ये चीजें मुझ पर बहुत ज्यादा शायद असर की है, तो मैंने वो सब अपनी शायरी में उसको कहा है कि हमें ऐसी तरक्की से कोई नस्बत नहीं है जहां फुटपाथ पर बच्चे गुब्बारे बेचते हैं। ये शेर मैंने कहे, इस
जी,
तरह
जी।
की मैं शायरी की थी। तो इसमें कहीं कोई महबूब नहीं है, कहीं कोई रुखसार नहीं, कहीं चांद नहीं है, कहीं शरार नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहाँ फुर्सत है इन सब बातों की।
बिल्कुल सर, जैसा समय है और अगर आप सही में साहित्यकार हैं तो ऐसी चीजें ही आपके दिल को छुएंगे और आप ऐसा ही लिखेंगे, ये तो है ही है।
मुझे बल्कि एक बार मेरे घर पर हम लोग बैठे हुए थे, मुजफ्फर रजमी साहब मेरे सामने बैठे थे, वो कुछ सुन रहे थे मुझे, उसमें कोई शेर बीच में आ गया ऐसा कुछ रोमानियत लिए हुए, कहने लगे ये निकाल लो, इसको आपको जरूरत नहीं है इस शेर की।
जी सर बिल्कुल।
मैंने कहा ये तो बड़ा अहम पहलू है गजल का, आप इसको निकल, कहने लगे आपकी जो शायरी है वो आपकी पहचान इसलिए है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हुए भी बेहतरीन शायरी करते हैं।
जी जी।
अपनी पहचान को खोना नहीं है आपने, ये पहचान बनानी है।
जी जी।
शायरी तो बहुत लोग करते हैं मगर शायरी से अपनी पहचान बहुत कम लोग बना पाते।
बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो मुझे उनकी बात जो है वो बड़ी अच्छी लगी और मैं अल्लाह करे कि वो जहां भी है परमात्मा उनको सुकून अता फरमाए, उनकी रूह को बहुत बहुत उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद हों।
जी जी।
तो मैं एक, चलिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एक छोटी सी गजल, ताजा गजल आपको।
जी सर बिल्कुल सुना।
आपके पास कितना वक्त है मुझे ये बताइए।
सर आप जितना भी वक्त ले लें, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है सुनने में, और वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, आप जो भी वक्त लें। और मेरे ख्याल से वक्त की पाबंदी हम इसलिए रखते हैं कि हमारे श्रोता जो है वो सुनकर बोर ना हो, लेकिन आपको सुनकर कौन बोर होगा। अगर मैं आपको ये बोलूंगी कि वक्त की पाबंदी, तो मुझे डांट पड़ेगी अपने सुनने वालों से, इसलिए सर कोई पाबंदी नहीं, आप जो चाहे सुनाए।
मैं ये कहता हूँ कि सुनने वालों पर भी थोड़ा रहम करना ही
नहीं
चाहिए।
नहीं सर,
वो
आप सुना कर रहम करेंगे उनको।
जी जी, नहीं वो तो खैर मेरा फर्ज है कि मैं आपको सुनाऊं। अब आपने मुझसे रब्ता किया है तो मैं आपको सुनाता हूँ कुछ। चलिए कुछ अच्छा सा सुनाते हैं आपको। मैं एक बिल्कुल ताजा कलाम आपके सामने पेश करता हूँ,
बिल्कुल सुनाए।
चार पांच शेर उसके सुन लें और फिर एक और गजल आपको सुनाता हूँ, उसके बाद एक पूरी गजल। मतला यूं है कि चले तो थे कि ये दुनिया बदल कर देख लेते हैं, चले तो थे कि ये दुनिया बदल कर देख लेते हैं, मगर फिर तय किया रास्ता बदल कर देख लेते हैं। चले तो थे कि ये दुनिया बदल कर देख लेते हैं, मगर फिर तय किया रास्ता बदल कर देख लेते हैं। जमी कम है हमारे खाद की वसवत ज्यादा है, वसवत कहते हैं फैलाव को। जमी कम है हमारे खाद की वसवत ज्यादा है, चलो फिर खाद का नक्शा बदल कर देख लेते हैं।
मतलब ख्वाबों को छोटा करते हैं।
हाँ बस जैसे भी
जी,
काम
जी।
चल सके इस दुनिया में, सुंदर सर काम चल सके।
गन्नी वाली बात आ गई जैसा आपके
सोचते हैं।
जी जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे कि आपने एकदम जो देखा वो लिख रहे हैं सर, वही चीज आ गई कि वाकई आजकल ख्वाबों को छोटा करना पड़ता है इंसान को। बहुत सही लिखा सर, बहुत सुंदर।
जमीन कम है हमारे खाद की वसवत ज्यादा है, चलो फिर खाद का नक्शा बदल कर देख लेते। मेरी बेटी की जिद है कान में सोने की वाली हो, मेरी बेटी की जिद है कान में सोने की बाली हो, मेरी तदबीर है तिनका बदल कर देख लेते। तदबीर कहते हैं एक कोई अपनी सलाह करना या मशवरा देना या कोई युक्ति निकालना। मेरी बेटी की जिद है कान में सोने की बाली हो, मेरी तदबीर है तिनका बदल कर देख लेते हैं। ये मेरी बेटी जो है अक्सर मेरी हसलों में आ जाती है।
जी जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप दिल से करीब है आपके वो। जी
तो मैं जब भी इस शेर को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं।
जी सर।
मेरी बेटी की जिद है कान में सोने की बाली हो, मेरी तकदीर है तिनका बदल कर देख लेते हैं। हम ऐसे चारागर हैं, चारागर डॉक्टर को कहते हैं
जी जी।
हम ऐसे चारागर हैं जो कोई दावा नहीं करते, वो कहते हैं ना शर्तिया इलाज होते हैं ना जो
जी जी जी।
तो हम ऐसे चारागर हैं जो कोई दावा नहीं करते, मर्ज बढ़ जाए तो नुस्खा बदल कर देख लेते हैं। हम ऐसे चारागर हैं जो कोई दावा नहीं करते
जी,
मर्ज बढ़ जाए तो नुस्खा बदल कर देख लेते हैं। हमें गर खुश कलामी से, खुश कलामी कहते हैं मीठी जबान।
अच्छा जी।
हमें गर खुश कलामी से कोई कमतर समझ बैठे, हमें गर खुश कलामी से कोई कमतर समझ बैठे तो हम भी बात का लहजा बदल कर देते।
बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सही बिल्कुल सर। इतना इतना आप अच्छा, इतने अच्छे से बोलते हैं तो इसको कोई गलत तरीके से ना ले, लहजा बदला जा सकता है। बहुत सही कहा सर।
हाँ ये होता है कि मीठी जबान
बिल्कुल बिल्कुल सर, वो लोग फायदा उठाने लगते हैं। जी जी।
कोई कमतर समझ बैठे तो हम भी बात का लहजा बदल कर देख लेते हैं, और ये आखिरी शेर के
ये तो एक मिनट सर, ये मैं कहना चाहूंगी, ये वाले शेर आपके मैं याद करके रखूंगी, ये तो बहुत जिंदगी में काम आने वाले हैं, रोज दिन ये काम आ सकते हैं। बहुत से लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कभी कभी, तो हम कह सकते हैं उनको ये बात। बहुत सुंदर सर
जी। तो हम भी बात का लहजा बदल कर देख लेते हैं, हमें क्यों हार जाते हैं हर एक शतरंज की बाजी, हमें क्यों हार जाते हैं हर एक शतरंज की बाजी, किसी दिन हम भी एक मोहरा बदल कर देख लेते।
बहुत सुंदर सर।
हमें क्यों हार जाते हैं हर एक शतरंज की बाजी, किसी दिन हम भी एक मोहरा बदल कर देख लेते हैं। मेरी बेटी की जिद है कान में सोने की बाली, मेरी तदबीर है तिनका बदल कर देख लेते हैं। तो ये एक बिल्कुल ताजा कलाम है।
बहुत सुंदर थी सर, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर, ये तो याद रखने लायक पंक्तियां हैं, मुझे लग रहा है जिंदगी के हर सफर में काम आने वाली।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी क्या और सुनना चाहेंगे आप?
सुना सकते हैं सर, बिल्कुल सुना दे। बिल्कुल सुनाए, कोई और एक दो रखना है।
वक्त का ख्याल रखिएगा।
तो जब मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरे सुनने वालों को अच्छा लगेगा सर, और मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
नहीं, मैं बहुत मशकूर हूँ आपके तमाम सामईन का कि उन्होंने मुझे बेहद मोहब्बतों से नवाजा, वो अब तक सुन रहे हैं, और मैं इसके लिए उनका भी बहुत बहुत
हम लोग आभारी हैं सर आपके। आप हमें इतना वक्त दे रहे हैं और हम आपको सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सुनाए,
हमारे यहाँ बारिश हो रही है बाहर,
हमारे यहाँ भी हो रही है सर, हमारे यहाँ भी हो रही है सर।
हाँ, काफी मौसम ऐसा खराब चल रहा है, 3 दिन हो गए
जी,
और बिल्कुल मौसम ठंडा है, और ऊपर से आज जो है इतवार का दिन है, संडे है, तो हमारी छुट्टी रहती है यहाँ अस्पताल में
जी,
तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। तो बस आप अपने सुनने वालों का ख्याल करें
जी,
कि वो उतना ही सुने जितनी के ओवरडोज नहीं होने।
डॉक्टर ओवरडोज नहीं देगा, काफी अनुभवी डॉक्टर है।
चलिए, ये गजल आपके सामने हाजिर करता हूँ कि तमाम सामईन की नजर के। ये मेरी गजल सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली गजल है मेरी,
जरूर सुनाए।
और हालांकि अब मैंने कई सालों से इसको नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने इसको निकाला, हालांकि ये गजल पुरानी है, लेकिन फिर भी मैंने इसे बहुत बार, मैंने बड़े सब तमाम मुशायरों में पढ़ी गई है,
जरूर,
और इसके शेर आप शायद कहीं आपने सुने भी हों, एक दो शेर, तो मैं आपके सामने हाजिर करती हूँ। शेर यो है कि मतलब यो है, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता, घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता। और तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, तेरी अजमत है, अजमत कहते हैं वकार को, यानी रिस्पेक्ट को और रीच को, या आपकी जो एक वैल्यू है सामाजिक उसको, तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता।
कासा मतलब
बर्तन होता है, मांगने वाले का जो बर्तन होता है, कासा बोलते हैं बर्तन
जी जी। अच्छा,
घर किसी का भी हो जलता नहीं देखा जाता, हमसे चुप रह के तमाशा नहीं देखा जाता, तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता। जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूँ, सहरा कहते हैं
रेगिस्तान जी,
जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूँ, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता, जब से सहरा का सफर काट के घर लौटा हूँ, मुझसे कोई भी हो प्यासा नहीं देखा जाता। और ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी, पूजा में
जी,
ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी, इसमें काबा या कलीसा नहीं
देखा जाता। वाह बहुत सुंदर सर।
कलीसा चर्च को कहते हैं, काबा तो मुसलमानों का एक वो है ही स्थल है, कलीसा चर्च को कहते हैं। ये इबादत है, इबादत में सियासत कैसी, इसमें काबा या कलीसा नहीं देखा जाता। और मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ, मेरी बात का मतलब समझो।
जी।
मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ, बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता।
देखा जाता, वह बहुत सुंदर सर।
मेरे लहजे पे न जा, कौल का मफहूम समझ, बात सच्ची हो तो लहजा नहीं देखा जाता।
वह
लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। लोग मीनार के गुंबद पे नजर रखते हैं, उसकी बुनियाद का नक्शा नहीं देखा जाता। और आखिरी मक्ता यूं है कि अक्स उभरेगा नफस, गर्द हटा दे पहले। अक्स उभरेगा नफस, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा
जाता।
अक्स उभरेगा नफस, गर्द हटा दे पहले, धुंधले आईने में चेहरा नहीं देखा जाता। तेरी अजमत है तू चाहे तो समंदर दे दे, मांगने वाले का कासा नहीं देखा जाता।
बहुत सुंदर सर,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत सुंदर सर, ये तो बाद में तो आपने और ज्यादा इतना क्या मैं बोलूं, ऐसा रंग दिखा दिया कि लग ही नहीं रहा कि मैं बोलूं कि अब मतलब अभी भी लग रहा है कि आपसे बहुत कुछ सुनना बाकी रह गया सर। और मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को भी ऐसा ही लग रहा होगा। और सर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जितनी भी मैंने आपसे बात की शुरू से, जब आपने शुरुआती कार्यक्रम की हुई तो आपने अंबाला के जिन शायरों के नाम लिए, सागर सिद्दीकी साहब का और उनकी वो हमें कहानी सुनाई, हाँ जी नासिर काजमी साहब की और सागर सिद्दीकी साहब की, मुझे इतना अच्छा लगा आपका ये कहना। न तो हम लोग अपनी ही बात करते हैं लेकिन आपने कैसे उनको याद किया, और मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास इस बात के लिए भी शब्द नहीं है, मैं भावुक हो गई हूँ आपकी इस चीज को देखकर। बहुत अच्छा लगा सर, हम भूल जाते हैं पिछली पीढ़ियों को, पिछले लोगों को, लेकिन
हमें जरूर याद रखना चाहिए।
तो सरमाया है
जी, यही तो सरमाया है हमारे पास जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिस पर हम हमें फख्र होता है।
जी जी,
हम क्या है, हम पर, हम अपने पर क्या फख्र करें, हम तो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। हमें अगर देखा जाए, हमें जबानों का पता नहीं है, हमें शायरी की समझ नहीं है, अभी तक हम उसको समझ ही नहीं पाए।
वही हमारे रहबर है लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं सर। और मुझे ये चीज आपसे सीखने को मिली कि आपने कैसे उनको याद किया और उनकी रचनाएं सुनाई। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट खाली हमारी उनको लेकर ही बात हुई, तो बहुत अच्छी लगी ये बातें, न तो उनको याद करने वाले ही लोग नहीं रह गए। बहुत अच्छा लगा सर, और मेरे पास तो सर शब्द ही नहीं कि मैं कह सकूं कि मुझे आज कितना अच्छा लग रहा है। और
बहुत शुक्रिया आपका।
और सर एक बार फिर जब भी आपके पास वक्त हो आप हमारे कार्यक्रम में आएंगे, इस उम्मीद के साथ ही मैं आज के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे।
नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इतना।
आपके तमाम सुनने वालों का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से, और बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं तो बहुत
नहीं सर ऐसा ना कहेंगे। जी जी,
और जो नए लिखने वाले हैं, मैं खास तौर पर आपके इस चैनल का थोड़ा सा फायदा उठाकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा।
जी सर जरूर कहें
कि अगर शायरी में किसी को थोड़ी भी दिलचस्पी है, अगर कोई है तो मैं एक डॉक्टर हूँ, इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि शायरी में दिलचस्पी लेना एक जिंदा लोगों की बात है। दुकानदारी तो सब कर लेते हैं,
बिल्कुल सर,
दुकान का कोई खास बात नहीं है, सब कर सकते हैं।
जी जी,
थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा वो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा समाज, एक अच्छी आगे हमें दुनिया बनानी है तो हमें उसके लिए कुछ अच्छाइयों को पालना भी पड़ेगा।
जी।
और उसके लिए अदब सबसे बड़ी चीज है। ये जो साहित्य है जिसे हम अदब कहते हैं, मैं साहित्य को ये मानता हूँ कि साहित्य जो है ये जैसे फसलों उगाते हैं, किसान फसलें उगाते हैं ना
जी जी,
तो उनके बीज संभाल कर रख लेते हैं
जी।
वो बीज जो हैं वो विचार हैं हमारे, वो हमारी हमारे हमें रास्ता दिखाने वाले हैं
जी बिल्कुल।
तो बीजों का कारोबार करना जो है ये अदीबों का काम है, ये साहित्यकारों का काम है कि वो बीज हैं जो पिछली नस्लों से कुछ चीजें आगे लेकर जा रहे हैं और आगे बो रहे हैं, लेकिन वो तब तक फलीभूत नहीं होते जब तक कि अगली नस्लें भी उन बीजों को सहेजेंगी नहीं।
बिल्कुल सर बिल्कुल।
अगर हम उर्दू से ये कहकर ये समझकर किसी ने कह दिया कि ये तो मुसलमानों की जबान है या किसी की जबान है, ये अक्सर चलन में होता है, इसलिए मैं आपसे ये
जी,
कर रहा हूं।
जी।
तो मैं आपसे ये बता दूं कि उर्दू इसी देश की जबान है, इसी देश में पैदा हुई और इसे मुसलमानों ने पैदा नहीं किया
जी।
ये बड़े कमाल की बात है।
अच्छा जी सर।
हाँ, ये उर्दू जो है दरअसल हिंदी के लोगों की वजह से जो है चलन में आई, और जब यहाँ मुगल आए उन्हें बड़ी परेशानी हुई कि वो सेना के जो लोग होते थे उनके लश्कर में वो तो हिंदी के लोग होते थे, यहाँ के
जी जी
वो तो पर्शियन जानते नहीं थे, अरबी नहीं जानते थे
जी।
तो उनको कैसे कमांड करें उसके लिए उर्दू का मतलब ही लश्कर है, दरअसल उर्दू का मतलब है फौज, फौज का खेमा जहाँ जाकर फौज रुकती है
जी।
उस खेमों को कहते हैं उर्दू। तो देखिए आप इसी से आप समझ सकते हैं
जी जी।
तो ये उनको कमांड करने के लिए, ये मुसलमानों को नहीं चाहिए थी, ये मुगलों को नहीं चाहिए थी
जी जी।
ये तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने हिंदी में अरबी भाषा के शब्दों को लेकर उनसे गुफ्तगू करना शुरू किया और इस तरह से उर्दू जो है ये चलन में आई।
बताइए सर, हमें ये बात पता ही नहीं थी अभी तक।
हाँ,
ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे जी।
ये सब सियासत के खेल हैं दरअसल, जबानों पर सियासत होती है। तो ये बड़े कमाल की बात है कि उर्दू किसी कोई भी जबान है, वो किसी मजहब की नहीं होती। जैसे पंजाबी है, पंजाबी कोई सिखों की जबान थोड़ी ही है। हम लोग पंजाबी बोलते हैं, हमारे पास के बहुत से हिंदू पंजाबी बोलते हैं। तो ये तो सोचने की बात है, बहुत सी ऐसी और जबानों के साथ कहा जा सकता है। जैसे अंग्रेजी बोलने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता, ऐसे उर्दू बोलने से, उर्दू तो हमारी अपनी जबान है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा सीखें समझें और बच्चों को अपने सिखाएं। मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा, मैं शायरी की बात कर
रहा। जी जी समझ गई सर। और सर हमारे देश में ही फिर आप गोरखपुरी और कृष्ण बिहारी नूर और आप जैसे लोगों को भी लोगों ने इतना सुना और सराहा है।
बेशक
बिल्कुल।
तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। खुदा हाफिज।
बहुत अच्छा लगा सर, हमें भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर।
बहुत बहुत मेहरबानी। आपके तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
आप
और अपना ख्याल रखिए कोरोना से, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनी तमाम जो वैक्सीन है वो लेते रहें। ये भी साथ साथ एक डॉक्टर होने के नाते
बिल्कुल सर। बहुत बहुत आभार आपका सर। प्रणाम सर।